पुनरुत्थान के 40 दिन बाद यीशु स्वर्ग में चढ़ गए और शिष्यों ने उन्हें जाते हुए देखा। लूका में यह दृश्य दर्ज किया गया है जब यीशु ने अपने शिष्यों को अलविदा कहा, तब वो उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। परंतु वे बड़े आनंद से क्यों लौटे? 17:34 स्वर्गारोहण। अपनी बाइबल में प्रेरितों के काम 1 खोले। अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता। पादरी कहते हैं कि उन्हें आज भी वो संघर्ष याद है जब उन्होंने लंदन हवाई अड्डे पर अपने माता पिता को अलविदा कहा था। वे अच्छी तरह से तैयार थे और हर कोई इस बात पर सहमत था कि उनका लंदन से अमेरिका जाना सही कदम था, परंतु वे अपना गृह देश छोड़ रहे थे और अलविदा कहने के लिए आप चाहे कितनी भी अच्छी तरह से तैयार हो, जब वो क्षण आता है तो ये कभी भी आसान नहीं होता है। अगर हमारे विमान के रवाना होने पर हमारे परिवार और दोस्तों ने एक दावत रखी होती तो उन्हें वो अजीब लगता, तो जब यीशु उन्हें छोड़कर गए तो शिष्यों की इस खुशी का हम क्या मतलब निकाले? शिष्यों की खुशी तब और भी अजीब हो जाती है जब हम याद करते हैं कि वे कितने भयभीत थे जब यीशु ने अंतिम भोज के दौरान अपने जाने की बात कही थी। अवश्य ही कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिस बात से वे पहले डरे हुए थे वह अब उत्साह का कारण बन गया था। इस पाठ में हमारा उद्देश्य यह जानना है कि वह कारण क्या था। लूका में दर्ज किया गया है कि जब यीशु ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। जब लूका हमें बादल के बारे में बताते हैं तो वो यरूशलेम के मौसम की स्थिति पर संवाद नहीं कर रहे हैं। जब परमेश्वर के लोग रेगिस्तान में थे तो परमेश्वर ने उन्हें स्वयं को बादल के खंभे में प्रकट किया था। इसी तरह सुलेमान के समय में परमेश्वर की उपस्थिति का बादल नीचे आया और मंदिर में भर गया। जब शिष्यों ने रूपांतरण में यीशु की महिमा देखी तो उन्होंने बादल में से परमेश्वर की आवाज सुनी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। अब लूका हमें बताते हैं यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। क्या इससे अधिक स्पष्ट कुछ और हो सकता है? यीशु पिता के पास से आए थे और अब अपना कार्य समाप्त करके वह स्वर्ग में अपने पिता के पास लौट रहे थे। आदम को बगीचे से निकाल दिया गया और उसके सभी बच्चों को परमेश्वर से अलग कर दिया गया, परंतु मसीह का स्वर्ग में स्वागत किया गया और उनके सभी बच्चों का परमेश्वर से मेल कराया जाएगा। पहले आदम ने हम सबको बाहर निकाला, अंतिम आदम हम सभी को अंदर ले जाता है। इसलिए शिष्य खुशी के साथ यरूशलेम वापस लौटे। जब मसीह स्वर्ग में चढ़े तो शिष्यों को पता था कि वो ठीक वही है जहां उन्हें उनकी आवश्यकता थी। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे आरोप के कारण जेल में है जिसमें दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान है। आपको एक अच्छे वकील की जरूरत है जो सबसे अच्छा हो। आपको एक अच्छा वकील मिल जाता है और जैसे जैसे आप उसे जानते हैं आपको पता चलता है कि वह न केवल एक कुशल वकील है बल्कि बहुत दयालु व्यक्ति भी है। आपके जेल में उनकी मुलाकात से आपको बहुत आराम मिलता है और जैसे जैसे आप संबंध बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप उनसे अपने जीवन की कठिनाइयां के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये बहुत मूल्यवान है, परंतु आपको अपने वकील से जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वो जेल में उस आराम की नहीं है। आपको ये चाहिए कि वो अदालत में आपका बचाव कर सके। पापियों के रूप में हमारी सबसे बड़ी जरूरत पृथ्वी पर आराम नहीं बल्कि स्वर्ग में सुरक्षा है। हमें एक वकील की आवश्यकता है जो हमारे मामले की पैरवी करेगा, और पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। कल्पना कीजिए कि आप स्वर्ग के कटघरे में खड़े हैं। शैतान जो आपका दोषारोपक है उसके पास आपके खिलाफ पेश करने के लिए मुकदमा है। अदालत कक्ष स्वर्ग दूतों से भरा हुआ है जो जैसे ही परमेश्वर न्यायाधीश के रूप में अपना स्थान लेते हैं वैसे ही उठ खड़े होते हैं। आपका दोषारोपक अपने कागजात लेता है और अपना मुकदमा प्रस्तुत करते समय अदालत के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। इसका सारांश यह है कि आप पाप के दोषी हैं और आपकी निंदा की जानी चाहिए। वो ये कहकर आरंभ करता है कि आप पाप में पैदा हुए हैं और आपका स्वभाव भ्रष्ट है। फिर वो आप पर उन विशेष पापों का आरोप लगाने लगता है जो आपने युवावस्था में किए थे। वो आपके जीवन की कहानी का अनुसरण आपकी कायरता, शालीनता, घमंड, शूद्रता और लालच के क्षणों की पहचान करते हुए करता है। जब आप सुनते हैं तो आप शर्मिंदगी की भावना से अभिभूत होकर घबरा जाते हैं। अंत में आपका दोषारोपक यह कहकर अपने तर्क को पुख्ता करता है कि भले ही आपने मसीह में विश्वास करने का दावा किया था, आपका विश्वास अक्सर कमजोर था और आपके मन में कई संदेह थे। उसका मुकदमा बाध्यकारी है और आपको डर है कि आपकी निंदा की जाएगी। तब यीशु आगे बढ़ते हैं। वे अपना संक्षेप लेते हुए आपकी सुरक्षा के लिए तर्क देना शुरू कर देते हैं। मेरा मुवक्किल मानता है कि दोषारोपक पक्ष द्वारा बोला गया हर शब्द सच है। हम किसी भी आरोप का विरोध नहीं करते हैं, ना ही हम किसी कम करने वाली परिस्थिति का दावा करते हैं। जैसा कि आरोप लगाया गया है, मेरा मुवक्किल दोषी है, परंतु जैसे ही वे अपने कीलों से जख्मी हाथों को उठाता है वे कहते हैं, मैंने यहां अपने खून से खरीदा हुआ पूर्ण क्षमादान पाया है। दोषारोपक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। आपके विरुद्ध उसका पूरा मुकदमा ध्वस्त हो जाता है और उसे अदालत से बाहर कर दिया जाता है। हमारा बचाव यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। उन्हें पहले ही क्रूस पर न्याय दिया जा चुका है और एक बार आरोप का निपटारा हो जाने के बाद इसे दोबारा नहीं लाया जा सकता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। जिसने भी किसी प्रियजन को मृत्यु के द्वारा खोया है वो जानता है कि अंतिम छापे एक शक्तिशाली प्रभाव डालती है। हम लोगों को वैसे ही याद करते हैं जैसे हमने उन्हें आखिरी बार देखा था। शिष्यों को यीशु की आखिरी वो झलक याद है जब उनके हाथ उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उठे हुए थे और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। स्वर्गरोहण हमें यीशु के पूर्ण किए गए कार्य और निरंतर कार्य के बारे में बताता है। उन्होंने स्वयं को हमारे पापों के बलिदान के रूप में अर्पित करने का कार्य पूरा किया। अब कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के क्रोध को शांत करने और उनके लोगों को क्षमा देने के लिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो काम समाप्त हो गया या पूरा हुआ। परंतु यीशु के पास निरंतर कार्य भी है। जैसे कि वे पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं, वे उस कार्य को जारी रखते हैं जो वे तब तक कर रहे थे जब उन्हें अपने लोगों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हुए उठा लिया गया था। वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है और ये कार्य उनके लौटने तक चलता रहेगा। यीशु स्वर्ग में चढ़ गए, परंतु पवित्र आत्मा के माध्यम से वे अभी भी अपने शिष्यों के साथ थे। मसीह इसी बात का जिक्र कर रहे थे जब उन्होंने कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ विराजमान है और साथ ही वे पवित्र आत्मा द्वारा विश्वासियों के दिलों में भी मौजूद है। परमेश्वर के पुत्र हमारे लिए पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए पिता और पुत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि हमने यीशु को कभी नहीं देखा है, पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे साथ उनकी उपस्थिति उतना ही वास्तविक है जितनी तब थी जब वे शिष्यों के साथ चले थे। मसीह हमें जाओ और चेला बनाओ के लिए बुलाते हैं। हमें पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे बनना है, और जैसे ही हम उनके नाम पर चलते हैं, यीशु कहते हैं, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारा संग हूं। जब यीशु का स्वर्ग रोहण हुआ तो दो देवदूत प्रकट हुए और उन्होंने शिष्यों से कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खरे आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि जैसे यीशु को बादल पर उठा लिया गया था, जब वे वापस आएंगे तो हम बादलों में उनसे मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। अपने स्वर्गरोहण में यीशु के साथ जो हुआ वो हमारे साथ तब होगा जब वे महिमा में आएंगे। ईसाई लोग अभी भी उस महान दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब ईसा मसीह दोबारा आएंगे। प्रत्येक ईसाई उस दिन का हिस्सा होगा जिसमें वे भी शामिल होंगे जो पहले ही मर चुके हैं, जो लोग पहले से ही प्रभु के साथ हैं और जो उनके आने पर जीवित है, वे सदा सर्वदा के लिए प्रभु के साथ होंगे। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। एक विश्वासी के रूप में आपको आज यह जानकर बहुत खुशी हो सकती है कि आपका स्वर्गरोहण परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है और उनके हाथ आपके ऊपर आशीर्वाद देने के लिए उठे हुए हैं। पवित्र आत्मा के माध्यम से उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहती है, आपको वो सब करने के लिए सशक्त बनाती है जो आपको करने के लिए आपको बुलाया गया है। और जब वे दोबारा आएंगे तो आपको सदा सर्वदा के लिए अपनी उपस्थिति में ले जाएंगे।